نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 115 آیت نمبر 53 سے 74 سورة یونس لیسن نمبر 115 آیت نمبر 53 to 74 سورة یونس اور ہمارے پارے کا یہ سیکنڈ لاسٹ لیسن ہے. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے آج کے سبق کی کچھ باتیں اور مین تھیم. آج کے اس سبق کا جو مین تھیم ہے سچی خوشیاں اس قرآن کے ذریعے. بنیادی طور پہ دو بنیادی ٹاپکس میں اس سبق میں بات ہوگی. پہلا ٹاپک ہمیں قرآن کی چار وہ صفات جس میں دو صرف نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہیں اور باقی چار جو ہیں یعنی ٹوٹل چار جو ہیں وہ ماننے والوں کے لیے ہیں. سبق کا آغاز پچھلے ہی سبق کی کنٹینویشن سے ہوگا کہ وہ قیامت کو جھٹلانے والے عذاب کے مطالبے کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ جب قیامت آئے گی تو ہو کیا. سبق کے شروع میں ہم تھوڑی سی قیامت کی باتیں کریں گے کہ کس طرح جب قیامت آئے گی تو اس وقت لوگوں کو کیا فیل ہوگا, اور اس کے بعد جو دوسرا بنیادی ٹاپک ہے قرآن میرے دل کی بہار, کیسے قرآن کو اپنی زندگی میں سجایا جائے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری آخرت سنورے بلکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے. پھر آج کے سبق میں اس سوال کا جواب ملے گا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں جمع کی جاتی ہیں ان میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے. پھر دوسرا جو مین ٹاپک ہے آج کے آیتوں میں وہ کیا ہے, ولی اللہ کون ہوتے ہیں, ولایت کن کو ملتی ہے, اور اولیاء کرام کی خوبیاں صفات, اور ہم کیسے ولی اللہ بن سکتے ہیں, اور آخر میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتیں جن کے اوپر نظر رکھتے ہی ایک انسان خود کو بے بس اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ماننے لگتا ہے. آئیے اب آیتوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے آیت نمبر 53 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویستنبیونک احق ہوا قل ای و ربی انہ لحقکم وما انتم بموجزین, اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, کون کرتے ہیں؟ مکہ والے کرتے تھے. کس سے کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. سوال کیا تھا کہ کیا واقعی حق ہے؟ کیا حق ہے؟ قیامت. پچھلے سبق ہی کو ذہن میں رکھ لیجئے تو اسی کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 13 سال تک محنت کی. آپ کا پیغام بالکل کلین اینڈ کرسٹل تھا, شیشے کی طرح صاف آپ کی باتیں تھیں. اس کے باوجود شک پیدا کرنے والے, نفس کے آگے اپنے آپ کو بڑا بننے والے, شک پیدا کرتے ہوئے کوشچننگ کرتے تھے, واقعی یہ سچ ہے؟ اب کیا حق ہے؟ نمبر ایک اسلام حق ہے, نمبر دو قرآن حق ہے, اور نمبر تین قیامت کا آنا حق ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک اپنے مخالفین سے بار بار ایسے انداز میں سوال کرتا ہے جس کو میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سول سرچنگ کوسچنس, وہ سوالات جس کو سن کر بندہ اپنے اندر جھانکنے لگ جائے. یہ سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, حقیقت ہے یہ ہوگا کہ نہیں, تو اس کا جواب دیا گیا قل ای, آپ کہہ دیجئے ہاں. یہ جو ای لفظ ہے نا یہ نام ہے, یس انگلش میں کہیں گے, لیکن یہ قسم سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ای کیا ہے؟ نام, یس اٹ ول ہیپن, قیامت آئے گی, و قسم کا ہے یہاں, اس کو و قسمیاں کہتے ہیں. و کی بہت ساری مختلف معنی ہوتے ہیں, و عطف کی ہوتی ہے جو عموماً آتی ہے اور کے معنوں میں, لیکن یہاں اس کا معنی اور نہیں ہے, قسم ہے. یہ وہی ہے جو و العصر اور و شمس و دوحا, تیسویں پارے میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یستنبیونا کا لفظ بڑا مشکل لگا آپ کو لیکن اصل میں بہت آسان ہے, نبا, نون با حمزہ, اور نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. تو گویا کہ ان کا سوال کیا تھا کہ واقعی قیامت آنی ہے, آئے گی, تو اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں پورے یقین سے کہو ای و ربی. دیکھیے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا قل, نام, یس آئے گی, شدت میں فرق ہوگا, آئے گی. یہاں سے آپ کو مومن کا اعتماد جھلکتا ہے کہ جب کوئی اس سے دین کی بات تمسخر میں کرے, مذاق اڑانے والے انداز میں کرے, تو وہ اس کے جواب میں شیکی نہ ہو, ہلکا نہ پڑے, بلکہ کیا کہے ای و ربی, हाँ इन्नहु लहक्कुन, बिल्कुल ये सच है। हाँ जब आएगी। वमा अंतुम बिमोजिज़ीन, आप अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। आप थोड़ी सी स्टाइल पे बात करें तो इंशाल्लाह ये आयत हम सब के अंदर कॉन्फिडेंस डिवेलप करती है। किस पे? हक पे होने वाले का कॉन्फिडेंस। आप देखिए कि जो सवाल था ना कि अच्छा अहक्कुन हुआ, ये सवाल था अमल से हटाने वाला। जब इंसान हक के रास्ते पे चलता है ना, तो उसके इर्द गिर्द वाले लोग उसको सरेआम तो नहीं कह सकते ना कि ये ना करो। बस अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लम की दावत पे आए तो लोग अबू बकर को आके ये तो नहीं कह सकते थे आपने गलत रास्ता चुना है, क्योंकि अल्लाह के नबी की तालीमात में ना चोरी चकारी सिखाते थे ना कोई गुनाह की बातें। तो फिर वो आके करते क्या थे? तर्स खाने वाला अंदाज। ये बिल्कुल ऐसे, देखो तुम्हें क्या हो गया, ये तुम्हारा हाल क्या हो गया, इतने बड़े बड़े दायरे पड़े हुए आंखों में, ये हल्के पड़ गए, ये लगता है तुम सोती नहीं हो रात को। फिर आप भी आगे से एक अपना दुख तो खोले, हाँ हमारा टेस्ट है कर, बस फिर तो उनको हमदर्दी का मौका मिल जाएगा। यानी लोग दीनदार की हालत पे तर्स खाने लगते हैं, चाहे उस गरीब को कोई और ही अंदर बीमारी लगी हो, लग सकती है ना, एनेमिक हो सकता है, ब्लड की कमी है तो रंग पीला होगा, वो कहेंगे ये रंग पीला इसलिए कि तुम पढ़ने जाती हो। कोई मोटा हो जाएगा कहेंगे देखा बैठ बैठ के मोटी हो गई, देखा वेट गेन कर लिया। अच्छा कोई वॉक ज्यादा करने लग जाएगा कहेगा देखा घुटनों में दर्दने शुरू होगी और वॉक कर करके आओ जाओ। तो जब लोग दीन के काम करने वालों को इस तरह की बातें करें, ये वो वक्त बड़ा नाजुक होता है। याद रखिए ये वो वक्त होते हैं जहां हमारे अंदर के कॉम्प्लेक्सेस बाहर आते हैं। अगर मोटापा मेरा कॉम्प्लेक्स था तो बस इस बात है अच्छा मैं मोटी हो गई हूँ, ओके 4 घंटे पढ़ना बैठना, फिर तर्जमा भी तो याद करती हूँ, फिर ये भी अच्छा इसका तो मैं तो सारे दिन बैठी रहती हूँ, ख़त्म, छोड़ो छोड़ो अब चलते फिरते सुनूंगी, बैठ नहीं सकती। वो चलते फिरते जो सुनते हैं वो चलते फिरते ही निकल जाता है। याद रखिए कभी भी किसी की ऐसी बात सुन के जवाब कह दे ई व रब्बी इन्नहु लहक्कुन, कॉन्फिडेंस है, तुम फिक्र नहीं करो ये हक है। इससे आप फील करेंगे कि उनको पता चलेगा। मैं आपको इसको छोटी सी मिसाल देती हूँ, जैसे कोई आपकी उंगली में रिंग पहना देखे आपको कोई कहे कि ये डायमंड है, मिसाल है कोई आपसे पूछे डायमंड है तो आपसे कहे हाँ ये डायमंड है, अच्छा अब ये स्टाइल आपके हाँ ये डायमंड है, और कोई आपसे कहे ये डायमंड हाँ ये डायमंड है भाई, फर्क है दोनों में, ये है ई व रब्बी। हम लोगों को अपने दीन की खुशियां बताते भी हैं लेकिन तर्स वाले अंदाज में, हाँ कुरान पढ़ने जाती हूँ बड़ी खुश हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है, और साथ फिर अपना गम भी सुनाते रहते हैं, टेस्ट भी होते हैं रिजल्ट भी आते हैं ये भी होता है, हालांकि कुछ भी ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें अपने नेकी के काम के ऊपर जमने का कॉन्फिडेंस रखें। हक में इतनी ताकत है जितनी एटम बम में भी नहीं है, कहीं एटम बम गिरता है ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता जितना हक किसी के दिल पे गिर के ब्लास्ट कर देता है। सूरत पढ़ चुके मायदा में, वाइजा समी हो, आंखों से आंसू बह निकल पड़ते हैं हक को सुनकर। तो जितना आपको अपनी इस कॉज पे यकीन है, आपके साथ वाले आपको कभी भी इस बारे में हिला नहीं सकते। बाज़ लोग ठीक लगता है कि तुम ठीक जगह जा रही हो, तुम्हें लगता है कि नबी सल्लम के दौर में ऐसे होता था? बाज़ दफ़ा लोग हमदर्दी के अंदाज़ में आपके साथ बात करते हैं, कभी शक दिलाने में, कभी मजाक उड़ाने में, तो इस सारी बातों का जवाब क्या है? कॉन्फिडेंस। हाँ ठीक है बिल्कुल, देखिए आप खुद जमे हुए हैं ना तो दूसरों को जमाएंगे। एक कील इस दीवार में लगा दिया जाए और वो हिल रहा है टिक 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 टिक, और एक घड़ी आप उस पर लगाएं, थोड़ी देर में क्या होगा? खट होगा, सिर्फ कील नहीं गिरेगा घड़ी भी गिरेगी। लतीफ़ा सुना होगा आपने कि कोई बच्चा था या बड़ा होगा कहीं था तो बाथरूम में था तो बड़े ज़ोर की आवाज़ आई, कभी क्या हुआ कहा कमीज़ गिर गई, आगे आप खुद ही समझिए, तो कहा कमीज़ गिरते से इतना शोर तो नहीं होता। तो याद रखे कि हक का बड़ा जोर है, बड़ा बोल होता है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस से लोगों को बताएं कि ये होगा इंशाल्लाह ये होगा, और ई व रब्बी इन्नहु लहक में, हक में सब कुछ है, हाँ लायक है, अल्लाह का रास्ता, कुरान हक है, जजा सजा हक है, इस ज़िंदगी का एक मकसद है, इस सारी चीज़ों को लेते हुए चलिए। और याद रखिए जितना आपके लहजे में यकीन होगा ना अपनी बात पे, उतना दूसरों को भी यकीन आएगा। आपका यकीन दूसरे को यकीन दिलाने का जरिया बनता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आपके बेटे की शादी है, 1 महीने बाद है, आप कार्ड दे के आते हैं कि नहीं लोगों को? लोग क्यों आते हैं? आपको यकीन था वो आएंगे, और उनको भी यकीन था कि आपने प्यार से बुलाया। वही लोग एक महीने के बाद आप आज से बुलाना शुरू कर दें कि हमारा रमज़ान का प्रोग्राम हो रहा है, उसकी दावत है, उसमें क्यों नहीं आते? तो जब यकीन होता है तो लोग भी आते हैं। और ठीक है, आपके यकीन से बुलाने और लोगों को यकीन है ना, आपने खुशी से बुलाया, आप बुलाते ही ऐसे हैं कि वो दर्स है, आइएगा ज़रा 4 घंटे कड़वी बातें सुने। और बच्चे की शादी पे क्या लिखा होता है कार्ड पे? आप शादी में आके हमारी खुशियों को दोबाला करें। तो ये जुमले फ़र्क पड़ते हैं ना। तो बहरहाल सारी बात का खुलासा क्या है कि अगर आप जम गए तो दूसरे भी जम जाएंगे। अपना तासुर खुद नोट करें, अगर आप शर्मिंदा शर्मिंदा हैं कभी दूसरे आपकी तरफ नहीं आएंगे। आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके चेहरे का इत्मीनान दिखे, फिर आपको पता चलेगा कि ये बात कितनी खूबसूरत है। खैर आगे चलते हैं, आयत 54। अब देखिए, जिन लोगों को दुनिया में नहीं मोहलत मिली, नहीं किया उन्होंने, इन सारी चीज़ों का इनकार ही करते रहे, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं आयत 54, वलौ अन्न लिकुल्लिन नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्दी लफ्तदत बिही। यहाँ से असल में अब हमारा मेन थीम है ना, उसकी माइंड मेकिंग हो रही है, जहन साजी हो रही है कि दुनिया में जो कुछ जमा करते हो उसकी वर्थ देखो क्या। और अगर किसी गुनाहगार जान के पास दुनिया की या ज़मीन की सारी दौलत भी हो तो वो उसे इस अजाब के बदले में दे डाले, कबूल होगा? नहीं होगा। इसका जवाब नहीं दिया गया। वह सर्रुन नदामत, और वो अपनी नदामत को छुपाएंगे। कब? लम्मा रावल अजाब, जब देखेंगे वो अजाब को। लेकिन फायदा? नो। वकुदिया बैनहुम बिलकिस्त, और इनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और इन पर कोई जुल्म ना होगा। तीसरी दफ़ा आ गया युज़लमून, दो दफ़ा पिछले सबक में आया था, एक अब आया है। अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ उन लोगों की बदबख्ती की बात कर रहे हैं कि जो ज़िंदगी में छुटलाते ही रहे, छुटलाते ही रहे, कभी एक आड़ आ गई, अभी करते, अभी आते, अभी करते। कितने भी इतमाद से किसी ने इनको क्यों नहीं बुला लिया, कितने भी प्यार से क्यों नहीं इनको हक की तरफ बुलाया, कितनी भी मोहब्बत से नहीं बुलाया, इनके पास बहुत ही कुछ और था करने को। किसी एक वजह कभी दूसरी में रहे, अब वो दुनिया तो गई, वक्त तो गुजर गया, लेकिन अब कौन सा वक्त है? दोबारा मैदान मख्शर। सूरह यूनुस के शुरू में ये बात हुई थी कि इस सूरत में आप बार बार ख़ुद को मैदान मख्शर में देखेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं वहाँ, अब सोचिए ना इस वक्त अबू जहल को, बस उसको सोचें, बहुत कुछ था उसके पास, ज़हीन भी बहुत था, वो खड़ा है मैदान हशर में, और अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्तों इसको जहन्नुम में ले जाओ। ठीक है, अब वो क्या चाहेगा? लफ्तदत भी, बदले में क्या दे दूं? फिदिया, रैनसम, बदले में क्या दे दूं? माँ फिलर दिस, जो कुछ ज़मीन में, क्या कुछ होता है ज़मीन में सोचिए ज़रा, सारा ऑयल दे के मेरी जान छुड़ा दो, सारी मदनियात। और ज़मीन में क्या होता है? डायमंड, सोना, चांदी, कॉपर, सिल्वर, मोती, गूंगे। सिर्फ ज़मीन की नेमतें गिनते जाएं तो हमारे मुँह में से राल टपकती है। जो औरतें डायमंड्स और पत्थर और मोती पहनती हैं ना शौक से, वो सब कुछ ज़मीन में है। कहेंगी ये सारे डायमंड, सारे पर्ल, सब कुछ ले लें, लफ्तदत बिही, और मैं अपने इस नफ्स को बचा लूं। और यहाँ देखिए फ़ीमेल के सीगे, नफ्स अरबी ज़बान में मोनस होता है, फ़ीमेल, इसलिए इफ्तदत में ता मोनस की है। और उस वक़्त असरुन नदामा, असरु कलव सीन रारा, सिर, ये जो सर होता है वो भी यही है, राज, छुपी हुई चीज़, कोई चीज़ छुपाना, इसका मतलब असरार है, अजदाद में से होता है। नदामत को छुपाएंगे भी इसका एक मानी बनता है, और नदामत ज़ाहिर होगी ये भी मानी है। दोनों को जमा कर ले तो ये अपनी शर्मिंदगी छुपाना चाहते हैं, छुप नहीं रही, ये मतलब है सर नदामा का, अगर वो सारी डिटेल भी छोड़ दें। शर्मिंदा बहुत है, और नदामत कहते हैं डिक्शनरी में वो हसरत जो किसी चीज़ के होने और ना होने से हासिल हो। यानी इनको ज़िंदगी में मौके मिले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट ही किया। आज अजाब देखकर दिल में छुपाई हुई नदामत छुपा ना सकेंगे। दुनिया में बड़ी तसन्नों से काम लेते थे, बहुत ज़्यादा ऊपर कोटिंग कर देते थे, आज इनकी असल खुल जाएगी। दुनिया में बहुत सारे झूठे उज़र बना के लोगों को मुतमईन करते थे और ख़ुद को भी किसी हद तक, लेकिन क़यामत के दिन सब खुल जाएगा। क़यामत के दिन सेंस ऑफ लॉस, नुकसान का एहसास इतना शदीद होगा कि सब कुछ खोल के रख देंगे। शॉक होता है ना, कोई बंदा शॉक्ड तो वो सब कुछ बोल देता है सदमे में। इनके ऊपर शॉक होगा। और आप देखिए कि खौफ की वजह से ये सारी कैफियत होती है ना, और उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था ना। वो तो बड़े चौधरी बने हुए थे मक्का के, उनको क्या पता था कि हमारे साथ कल इतना तौहीन अमेज़ सलूक होगा, तो वो अनएक्सपेक्टेड होगा। इसी तरह यहाँ असरुन नदामा के साथ इकमानी ये भी आता है कि वो साकत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, ठीक है। और एक दूसरा मानी क्या है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। और आप पढ़ें क़यामत के बयान को, कभी रोएंगे कभी चुप हो जाएंगे। रिवायत में यहाँ तक आता है कि जहन्नम में इतना रोएंगे इतना रोएंगे इतना रोएंगे, मालिक को पुकारेंगे। कुरान में पढ़ेंगे या मालिको, ए मालिक जहन्नम के दरोगा अपने रब को पुकार के हमसे अजाब दूर कर दे। बोलते रहेंगे कोई जवाब ही नहीं आएगा। तो फिर आपस में क्या कहेंगे, ये बहुत हम बोल उठे ना, तो ज़रा थोड़ी देर अब चुप करके बैठते हैं, शायद अब इनको हम पे तरस आ जाए। फिर भीगी बिल्लियाँ शक्लें बनाएंगे, जैसे बच्चा कभी बहुत रोता है कभी ऐसे मिस्कीन बन जाता है कि चलो शायद माँ को अब रहम आए। कभी चीखेंगे कभी चुप कर जाएंगे कभी कुछ करेंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। वह खुद ही अब ना हम बिलकिस, इंसाफ के साथ मामला हुआ है। आप पढ़ेंगे सूरत मोमिनून का आखिरी रुकू है कि ये खुद चिल्लाएंगे, रब्बना ग़लबत अलैना शिक्वतुना, ए हमारे रब हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आ चुकी थी और आज हम इस जहन्नम में आ गए। किस चीज़ के फैसले हो जाएंगे, कुदिया बेना हम, तो नंबर एक बाहम लड़ने झगड़ने वालों के फैसले हो जाएंगे। हक की तरफ बुलाने वालों और इसको कबूल ना करने वालों के फैसले हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में वो थ्रेट फील करते थे ना, तो वहाँ पता चल जाएगा क्यों कौन बुलाता था किसको। तीसरी बात है कि जालिम और मजलूम एक ही अदालत में खड़े होंगे। आज दुनिया में जुल्म कर रहे हैं या सह रहे हैं, कल दोनों एक कटहरे में होंगे। इसी तरह एक चौथी इसकी तफसीर भी आती है कि अंबिया और कौमों के दरमियान फैसले हो जाएंगे, और ये बात बहुत दिल को लगती है। आप ज़रा सोचिए, इंतज़ार हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है। कभी भी दुनिया में आपने देखा हो तो इंतज़ार मुख्तलिफ बहुत किस्म का होता है। और क़यामत के मैदान को सोचना है तो हज का मंजर ज़हन में ले आए, अल्लाह आप सबको नसीब करे। अरफा के मैदान में या तवाफ़ हिफाजा के वक्त आप नीचे देखें ना, तो आपको अपने पाँव नहीं दिखते, पाँव पे पाँव पड़ते हैं। कभी रमिय जमार करते हुए देखें, पाँव नहीं दिखते, सिर्फ नीचे दूसरों के पाँव दिखते हैं, आपको अपने नहीं दिखते, इतना रश है। अब आप सोचें लोग खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं, पहले तो है इंतज़ार, फिर इंतज़ार की किस्में। मसलन बाज़ इंतज़ार होते हैं तजस्सुस वाले, सस्पेंस, वो कौन सा होता है जिसमें पता नहीं होना क्या है, पता नहीं होना क्या है। इस पे आप अपना आज से कोई 15-20 साल पीछे का कोई एक्सपीरियंस याद करें कि आपके स्कूल में रिपोर्ट कार्ड्स मिलने थे, रिजल्ट था आपका मैट्रिक का, FSC का, बायोलॉजी, कोई भी, वो वक्त कैसा होता है। चले आज आप अपने बच्चों की मदर मीटिंग्स में जाती होंगी जब आपके बच्चों को रिजल्ट मिलने हैं, कैसा होता है, हाथ ठंडे हो रहे थे, ये नहीं पता था कि पास होना है क्या होना है। एक तो ये कैफियत है, और क़यामत के दिन ये होगी, कुछ नहीं पता कि कौन किधर जा रहा है। फिर आप देखिए एक इंतज़ार होता है शौक वाला, किसी को मिलने का शौक़ है तो ऐसे लगता है घड़ी ख़राब है, बार बार आप चेक करते हैं इसका सेल वीक है, क्या हो गया अभी आए नहीं, अभी जहाज़ नहीं उतरा, अच्छा अभी लैंड नहीं किया, क्या हो गया PI वालों को, कहते हैं ना ऐसी बातें। तो शौक में भी वक्त नहीं गुजरता। और एक तीसरा इंतज़ार होता है खौफ वाला, साफ पता है आगे मार पड़नी है, कुट पड़नी है, उस इंतज़ार की भी हालत देख लें। क़यामत के दिन लोगों का यही हाल होगा। एक हदीस है, खुलासा सिर्फ बताऊंगी कि क़यामत के दिन लोग खौफ की वजह से अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, कोई घुटनों तक, कोई टखनों तक, कोई नाफ तक, कोई सीने तक, और कोई मुंह तक अपने ही पसीने में डुबकियाँ खा रहा होगा, जिसको आज की ज़ुबान में आप ये कह लें कि खौफ की वजह से उनके स्वेट ग्लैंड्स खुल जाएंगे। यहाँ तक रिवायत में आता है कि जहन्नमियों के आंसुओं से वहाँ नदियाँ जहरी हो जाएंगी पानी की, जहन्नमी इतना रोएंगे कि ये आँखों के नीचे यहाँ चिक्स पे निशान पड़ जाएंगे रोने के, फिर वहाँ पानी जारी होगा, फिर जिस्म का पानी ख़त्म होगा तो खून जारी होगा, खून ख़त्म होगा तो पस यानी पीप जारी हो जाएगी। ये सही रिवायतें हैं जो मैंने और आपने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मुतमईन है, खुशियाँ मना रहे, रोते रहेंगे रोते रहेंगे। इब्ने माजा की रिवायत में आता है कि इतनी बड़ी नदियाँ नालियाँ जारी हो जाएंगी कि अगर उसमें कोई कश्ती चलाना चाहे तो कश्तियाँ चला ले। وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. آج بھی کبھی شرمندگی ہو تو ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے. یہ بھی ایک ہیومن سائیکالوجی یہاں اللہ نے بتا دی. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، سب ختم ہو گیا. اس لیے آج کچھ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھی ترمذی کی روایت ہے، اغتنم خمسن قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے پانچ کو غنیمت جانو. زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مال کو فقر سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور آخری بولے فرصت کو مصروفیت سے پہلے. یہ سننا جا رہی تھی آپ کے منہ سے، کتنا وقت آج ہمارے پاس، اس سے پہلے کہ مصروف ہو جائیں. آجو آج جوانی ہے، دیکھیے جوانی کی امنگیں، جوانی کی باتیں، ہر چیز جوبن پہ ہوتی ہے. کل وہ وقت نہیں رہے گا. آج بھاگ دوڑ کے کام کر، ایک صفحہ بھی آپ یاد کر لیتے پانچ منٹ میں، بات میں ہو سکتا ہے ایک صفحہ آپ کو ایک گھنٹے میں بھی یاد نہ ہو. جوانی میں کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں لوگ. میں اکثر جتنی بھی کلاسز لی ہیں پہلے، تو چھوٹی بچیوں کو ہمیشہ ہم اسٹولس دیتے تھے نیچے کمرے کے حساب سے، اور بڑے لوگوں کے لیے سیٹ چیئرز ہیں. تو میں حیران ہوتی تھی کہ کرسیوں پہ بیٹھے لوگ الٹم پلٹم شروع ہو گئے ہیں، ڈیڑھ دو گھنٹے میں بچیاں اسٹل ساکن، کیونکہ دبلی پتلی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی تمنائیں ہوتی ہیں جوانی میں، کبھی کپڑا جوڑا ایک سلتا دیکھے، بچیوں کی خوشی دیکھے، پہننے گی اوڑھیں گی، وقت کے ساتھ کوئی خوشی نہیں. کپڑا بھی اچھا ٹھیک ہے رکھ لو، پہن لیں گے، سلا لیں گے، وہ خوشی نہیں رہتی. خریدنے کا شوق ہوتا ہے، پہننے کا ختم. جوانی میں پہننے کا شوق ہوتا ہے. یہ سب چلا گیا. آج اگر جوان ہے تو کل اس کی فکر کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنی بہتری کرے. کہاں وقت ملے گا ہمیں، یہ سوچنے کی بات ہے. دن نہیں تو رات، ویک ڈیز نہیں تو ویکینڈ، گرمی نہیں تو سردی، اور اسی طرح کی باتیں، لیکن کچھ کر کے رہیں. نہ دل چاہے تو آئیے اگلی آیتیں پڑھتے ہیں جس میں اللہ کی بڑائی ہے، اس کی قدر، اس کی ویلیو. جس چیز کی ویلیو پہچانتے ہیں اس کے لیے قیمت ہم دیتے ہیں. سردیوں میں صبح اٹھ کے بھی جاتے ہیں اور اندھیری راتوں میں واپس بھی آتے ہیں سردیوں میں. کیوں؟ کہ ویلیو ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رب، اس کے نام پہ اگر کچھ کام کرنا ہے تو کیوں فکر کرتے ہو. آیت 55، اللہ آگاہ ہو جاؤ، بی اویئر. ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں، وہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے. سوچیں ذرا، کچھ ہوا اندر، سب کچھ اللہ کا ہے. سارا سونا، ساری چاندی، سارے ہیرے، سارے موتی، سب کچھ اللہ کا ہے. کیا کچھ ہے اس زمین و آسمان کے بیچ میں، سب کچھ ہی ہے. نبی، ولی، پیغمبر، رسول، انسان، جاندار، بے جان، سب کچھ اس میں آتا ہے. یہ سب کچھ میرے رب کا ہے. کبھی اپنے خاندان کے کسی بڑے امیر شخص کا تصور کریں، جن کی رونت ہمارے دماغ پہ ہوتی ہے. ان کا گھر آٹھ کنال پہ ہے، ان کی حویلی ہے، ان کی اتنی زمینیں ہیں، ان کا کاروبار ہے، ان کی مل ہے، فیکٹری ہیں، یہ کہتے ہیں نا. اب اس کے بعد اس جملے کو دوبارہ شعور سے سنیں. اللہ، حرف تنبیہ ہے کہ غور سے نہیں سن رہے تو سنو. کہ ان للہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ اللہ کا ہے. تو بتائیے، بڑے لوگوں سے تو لوگ دوستی کرنا بڑا خوش ہو کے کرتے ہیں، تو پھر کیا اللہ سے نہیں کرنی؟ انسانوں کی اکثریت کو یہ بات پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، پھر بھی نہیں مانتے. کیوں؟ کہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں. الا ان وعد اللہ حق، دوسری بات. پہلی بات ہے اللہ سب سے بڑا ہے، سب کچھ اس کا ہے، ہی اونڈ ایوری تھنگ. اور دوسری بات ہے کہ اس کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ پکڑ دھکڑ کا وعدہ، جزا سزا کا وعدہ. جو اچھا کرو گے اس کے اوپر اجر، جو برا کرو گے اس کے اوپر اجر. یہ اللہ کے وعدے سارے سچے ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے ہی کوئی نہیں. یہ بڑی بے بسی کی بات ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت کیوں نہیں یہ دو باتیں جانتی، کہ پہلی بات کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اللہ نے کہہ دیا جنت ہے تو ہے، پھر لوگوں میں شک کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں تک علم نہیں پہنچا، معرفت نہیں ہے، رب کی آگہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آج بھی مسلمان ہونے کے ناطے بچپن سے جنت جہنم سن رہے ہیں، کتنا یقین ہے. ہمیں موسم کی پریڈکشن کا زیادہ یقین ہوتا ہے کہ آج بارش ہوگی، آج نہیں ہوگی، آج گرمی ہے، آج سردی ہے. لیکن جو چیز جس کا غم سب سے زیادہ لگنا چاہیے نا، سچی بات ہے، ابھی تو وہ غم لگا ہی نہیں ہے. सुबह उठते हैं तो दुनिया के गम में उठते हैं, और रात को सोते हैं तो कई गम ले के सोते हैं। कल ये करना, उधर जाना, ये देना, ये लेना, वो करना। और सुबह उठते हैं तो एक लंबी थिंग्स टू डू होती है, और शाम को हसरत होती है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अल्लाह कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी एकदम रुक जाएगी। आयत 56, व युमीत व इलैहि तुरजऊन। वही है जो जिंदा करता है और मारता है, और उसी की तरफ तुमको लौट के जाना है। ये घड़ी की टिक 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 तुम्हें बता रही है कि तुम जितने मर्जी काम कर लो, जीना मरना दुनिया के लिए रखो, लेकिन इसी में जीना, इसी में मरना। एक दिन अल हई तुम्हारी हयात ले जाएगा, और अल ममीत तुम्हें मौत दे देगा। यहया हयन, सारी हरकत देखे जिंदगी की वजह से है ना, इस बात की फिक्र नहीं है कि लौट कर क्या जवाब देंगे। कभी आप अपने घर में रहने लगे किसी ऐसे बंदे को सोचें जो कल आपके साथ था अब नहीं है, है ना, हम सबके कोई ना कोई। पिछले घरों को पाकिस्तान के सोच लें। अब सोचिए जब वो अपनी ज़िंदगी में सारा दिन अपनी चीज़ें उलटते पुलटते हैं। मुझे अपनी नानी याद आती हैं, वल्लाह ही इतनी सलीके वाली, जब देखो अपनी अलमारी ठीक कर रही हैं, फ्रिज के अंदर छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी में से छोटी में डाल रही हैं, हर वक्त चीज़ें, अपना संदूक है तो उसको सेट करें। आज अगर मेरी को मामानी सुन रही हो तो उनसे पूछें ज़रा कि नानी के कोई कपड़े अगर रखे हैं घर में तो इतने सालों में पड़े हैं कि पड़े हैं, जो चले जाते हैं उनकी चीज़ें हिलती नहीं अपनी जगह से, मटियाँ पड़ जाएं उस पर, गर्मी चली जाए, सर्दी आ जाए, हमारी चीज़ों को कोई हाथ नहीं लगाता। तो ज़िंदगी हरकत के ख़त्म होने का नाम है, और मौत बेबसी का नाम है। इसी धोखे से निकलने की ज़रूरत है, इसी में मगन है, इसी से निकलने के लिए हिदायत की ज़रूरत है।